खुदावंत के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। और खुदावंत का शुक्र है कि आज फिर हम इकट्ठे हैं ताकि उसके जिंदगी बख्श कलाम में से सीखें। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसलिए मेरी आज दुआ है आप सबके लिए कि आज हम जो कुछ भी अपनी तरक्की, नसीहत, तरबियत और हौसला अफजाई के लिए सीखें वो हम सबके लिए बाबरकत ठहरे। तो आए हम जिंदगी बख्श कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से देखें, नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 4 बाब, उसकी 11वीं आयत से हम 16वीं आयत तक का हिस्सा देखेंगे और इसमें से चंद एक बातें अपनी तरबियत और नसीहत के लिए सीखेंगे। आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हम ग्रेस बाइबल चर्च में इस खत में से आयत बा आयत सीख रहे हैं, मजमून बा मजमून सीख रहे हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम एक दिन पुराने अहदनामा में और दूसरे दिन नबियों के सहीफों में और तीसरे दिन मुकाशवा की किताब में हों और सही तरीके से हम खुदा के कलाम को समझ ना पाए। लेकिन जब हम आयत बा आयत मतालिया करते हैं और या किताब बा किताब मतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस किताब में, इस खत में, अंजील में खुदावंद यीशु मसीह या खुदा के रसूल या नबियों का क्या मकसद था उस खत को, किताब को, सहीफे का लिखने का। तो इसलिए हम इफ़सियों 4 बाब उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजगीरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंकों से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पैवस्त होकर हर तरह से बढ़ते जाएं, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पैवस्त होकर और गठ कर उस तासीर के मुताबिक मुआफिक जो बाकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाते हैं, अपने आप को बढ़ाता है ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करते जाएं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम पिछले दिनों में से सीख रहे हैं कि खुदावन खुदा का मकसद इस ज़मीन पर रसूलों को, नबियों को, मुबशरों को, चरवाहों को, उस्तादों का देने का यही था, जिसे हम कह सकते हैं कि खुदा ने रसूल को रसूल की खिदमत इस मकसद के लिए दी थी कि खुदा के हुक्म और अपनी उस रसालत को, रसालत से मुराद यानी कि रसूल की खिदमत को, उस पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। आप सबको याद है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब मुर्दों में से जी उठे तो मत्ती की इंजील उसके 18वें बाब में अपने 11 शागिर्दों को क्या हुक्म दिया था। अगर आप मेरे साथ इसे देखना चाहते हैं तो, या कोई बहन भाई लिखना चाहता है तो वो इसे लिख सकता है कि मत्ती की इंजील उसके 28वें बाप में यीशु मसीह ने अपने 11 शागिर्दों को मुर्दों में से जी उठने के बाद जब यीशु मसीह उन्हें नजर आए तो उनसे कलाम किया, उनकी हौसला फजाई की, उनको जो डरे हुए थे, जो घबराए हुए थे, और यहाँ तक कि बहुत से शिगिर्द अपने पुराने पेशे की तरफ लौट चुके थे, जिसमें हम कह सकते हैं पतरस और यूहन्ना और दूसरे शिगिर्द। वो मछेरे थे और उन्होंने फिर दोबारा अपना मछली पकड़ने का काम शुरू कर दिया, लेकिन यीशु मसीह जब उन पर जाहिर हुए, उनको नजर आए, उनको कलाम सुनाया, उनको वो बातें याद दिलाई, अपने वादे उनको याद दिलाए, तो उनसे कहा। 11 शगीर्द जब गलील के पहाड़ पर थे तो यीशु मसीह ने उनको मकरर किया और यीशु मसीह ने उनको कहा कि शक ना करो, मैं तुम्हें ये इख्तियार देता हूँ, क्योंकि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो यीशु मसीह ने 11 रसूलों को, 11 शगिर्दों को क्या हुक्म दिया था। 19वीं आयत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि पास तुम जाकर सब कौमों को शगिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। पालूस रसूल यहां पर कहता है कि और उसी ने, ये उसी का लफ्ज किसकी जात के लिए इस्तेमाल हुआ है, खुदावन खुदा की, कि उसने बाज को रसूल, रसूल की खिदमत क्या थी कि वो खुदावन खुदा के पैगाम को लेकर कौमों तक, कबीलों तक और मुख्तलिफ जबाने बोलने वाले लोगों तक लेकर जाएं। तो 11 शगिर्दों को यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम शक्की ना बनना। आप सबको याद है कि यीशु मसीह जब कब्र में उतारे गए उसके बाद 3 दिन तक शागिर्दों में यही बात, यही खौफ, यही परेशानी, यही शक था कि क्या हुआ, कि क्या वो अपने कहने के मुताबिक जी उठेगा। हालांकि यहां तक देख सकते हैं कि शागिर्द उसकी बातों को भूल चुके थे, खौफ, बगावत, और यहाँ तक कह सकते हैं कि रूमियों और यहूदियों की मुखालफत ने उनको इतना परेशान कर दिया था कि वो डरे छुपे रहते थे। तो यीशु मसीह ने उनको ये हुक्म दिया कि जाकर सब कौमों को शिगिर्द बनाओ जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। सो रसूल की खिदमत क्या थी कि जाकर यीशु मसीह का पैगाम, यीशु मसीह के बारे में बताना। आप सबको याद है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसी मकसद के लिए पैदा हुआ था कि यसाया नबी का वो कलाम उसकी जात, उसकी जिंदगी में पूरा हो कि देखो मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं, खुदावन के लिए राह तैयार करो, हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक टीला जो ऊंचा है वो नीचा किया जाएगा, जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाएगा, और खुदावंद खुदा अपनी निजात लोगों पर जाहिर करेगा। हर नबी, हर रसूल का क्या था, एक जमीन पर मकसद था। रसूल का मकसद क्या था, अपनी खिदमत को पूरा करना कि अंजील की मनादी करें। इस दौर में कोई रसूल नहीं है, सब रसूल अपनी खिदमत को अंजाम दे चुके हैं। इसलिए हमने रसूल की खिदमत के बारे में देखा था, रसूल को खुदा ने मुकर्रर इसलिए किया था कि वो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को पूरा करें, और बाज को नबी, खुदा ने बाज को नबी इसलिए होने के लिए बुलाया कि उसकी खिदमत को या उसके कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं। और नबी जब खुदा मुकर्रर करता था तो उसे नबूवत मिलती थी। नबूवत से मुराद के खुदा से अलहाम या उसे मुकाशफा या रोया में उससे कलाम करता था कि तू मेरे मुंह की बातों को लिख। जैसे मूसा नबी पर खुदा ने जब वो खुदावंद खुदा की हजूरी में कोहे तूर के पहाड़ पर कोहे सीना जिसे कहते हैं वहां पर गया, 40 दिन 40 रात वहां पर गुजारे, तो खुदावंद खुदा ने 10 अहकाम दिए। खुदावंद खुदा ने अपनी शरीयत मूसा को दी और उसने उन बातों को लिखा कि वो कौम बनी इसराइल के लिए रहनुमाई हो, वो कौम बनी इसराइल के लिए खुदावंद की हदायत हो, वो कौम बनी इसराइल के लिए और आने वाली नस्लों के लिए क्या हो, खुदा के जाब्ते, खुदा के हुक्म, खुदा का मयार या खुदा की जो ख्वाहिश है बनी इंसान के लिए ठहरे। तो मूसा को खुदा ने अपना कलाम जिसे कहते हैं कि शरीयत की, जिसे तौरेत की किताब भी कहा गया है और जिसमें 5 किताबें पाई जाती हैं, पदेश, खरूज, अबार, गिनती, इस्तिस्ना, ये 5 किताबें हैं जिनको खुदा उनके बंदा मूसा नबी ने लिखा। जैसे दाऊद नबी को देखते हैं, दाऊद पर खुदावंद खुदा ने अपने मजामीर के वसीला से वो रूह से मामूर होकर अपने दुख में, मुसीबत में, खुशहाली में, परेशानी में, बादशाही की हालत में, दौड़ता हुआ खौफ की हालत में, भेड़ों को चराते हुए, दुश्मनों का मुकाबला करते हुए, जिंदगी के तमाम ऊंचे नीचे रास्तों में खुदावंद की क्या करता है, इबादत करता है, प्रस्तुति करता है। और खुदावंद ने उस पर अपने रूह को नाजल किया कि वो जबूर की, मजामीर की, गीत की या प्रस्तुति की क्या करके किताब लिखे, जिससे उस दौर के लोगों को और आज हम सबको भी क्या मिलती है, बरकत मिलती है। सो नबी को खुदावंद खुदा किस लिए मुकर्रर करता था कि खुदावंद खुदा की जिंदा आवाज उसके लोगों तक पहुंचाई जाए। जैसे मेरे साथ निकालें यर्मिया नबी का सहीफा। जब यर्मिया नबी के सहीफे को देखते हैं तो उसके पहले बाब की चौथी आयत में हम यूं देखते हैं कि खुदावंद खुदा ने यर्मिया को नबी होने के लिए मुकरर किया। नबी को खुदा ये नहीं कि जब वो बड़ा होता था तब, नबी की खिदमत के लिए खुदा इंसान को पहले ही से चुन लेता था, लेकिन जब वक़्त आता था कि वो इस काबिल हो, उस खिदमत को करे, तो उस खिदमत को सरंजाम दिया जाता था। यर्मिया नबी का सहीफा, उसका पहला बाब, उसकी चौथी आयत में खुदावन खुदा कलाम करता है, कहता है, तब खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। किस पर नाजिल हुआ? यर्मिया पर। और उसने फरमाया, यर्मिया नबी को रोने वाला नबी कहा गया है, यर्मिया नबी को मातम करने वाला या आंसू बहाने वाला, बनी इसराइल कौम की हालत पर शिकवा या आंसू या मातम करने वाला नबी कहा गया है, जो बनी इसराइल कौम की बरगश्तगी, बनी इसराइल कौम के गुनाह और खुदा को छोड़कर झूठे मबूदों की तरफ उनके फिर जाने पर क्या करता है, नबूवत करता है, कलाम करता है, मलामत करता है, उन्हें समझाता है। इसलिए नबी की खिदमत उस दौर में बहुत मुश्किल खिदमत थी, क्योंकि नबी खुदा की तरफ से कलाम को सुनता और करता और फरमाता कि खुदा ये कहता है। तो बहुत दफ़ा लोग जैसे कहते हैं कि पालूस रसूल कहता है कि क्या मैं सच बोलने के बायस तुम्हारा दुश्मन हो गया? इसी तरह उस दौर में जब नबी सच बोलते थे तो बहुत से लोग उनकी मुखालफत के लिए खड़े हो जाते थे। तो खुदावंद खुदा का कलाम यर्मिया पर नाजल हुआ और उसने उसको कहा, 5वीं आयत में, इससे पेशतर के मैंने तुझे बातन में खलक किया, यानी कि तेरी माँ की पेट में तू सूरत पकड़ता या तेरा वजूद शुरू होता। मैं तुझे जानता था। जबूर 139, हम जानते हैं कि जब भी हम गाते हैं तो कहते हैं कि खुदाया तेरी रूह तो मैं भला ना सके किधर जावा, तेरी हजूरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ यूं नसा। क्योंकि हम खुदा से छुप नहीं सकते, वो आसमान और जमीन और हर एक बात का जो गुजर चुकी है, होने वाली है और आने वाले वक्त का हिसाब किताब रखता है। तो खुदावन ने कहा कि मैं तुझे जानता था और तेरी वलादत से पहले, यानी कि वलादत का मतलब तेरी पैदाइश से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। इससे पहले कि तू शक्लो सूरत अपनी माँ के पेट में पकड़ता, इससे पहले कि तेरा वजूद होता, इससे पहले कि तू यर्मिया कभी पैदा होता, मैंने तुझे क्या ठहराया? कौमों के लिए नबी ठहराया। जब खुदा किसी को नबी की खिदमत देता है तो वो इसलिए देता है कि उसे इस्तेमाल करे। और नबी की खिदमत बहुत मुश्किल खिदमत थी। पालूस रसूल इसके बारे में बताता है, मूसा नबी इसके बारे में बताता है और इसके बारे में यर्मिया भी कहता है। कहता है, तब मैंने कहा, हाय खुदावंद, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। लेकिन खुदावन ने मुझे फरमाया, यूं ना कह के मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जानेगा, और जो कुछ तू फरमाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूँ। तब खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावन ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। देख आज के दिन मैं तुझे कौमों पर और संतलतों पर मकरर किया कि उखाड़ और ढा और हला कर और घिरा और तमीर कर और लगा। पाकलाम यहाँ पर हमें यही सिखाता है कि खुदावन खुदा जब अपने लोगों को मुकर्र करता है तो कहता है, डरो मत। इसलिए पालूस रसूल ने कहा कि खुदावन खुदा ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबशर, बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। रसूल की खिदमत, नबी की खिदमत। आज इससे पहले कि हम अपने घरों को जाएं, सवाल ये है कि हमारी खिदमत क्या है? अगर हम पासबान हैं तो हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। अगर हम मुबशर हैं तो हमें अपने आप को खुदावन की मनादी के लिए तैयार करने की ज़रूरत है, उसकी आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। अगर हम उस्ताद हैं तो हमें खुदावन खुदा के कलाम में से देखने की ज़रूरत है कि वो कौन सी बातें हैं जो खुदा चाहता है कि हमारी ज़ात में नज़र आएं, जिससे खुदा की ज़ात को इज़्ज़त और जलाल मिले। इसलिए अपने आप से ये सवाल करें कि आज हम इस ज़मीन पर क्यों हैं, क्योंकि खुदावन खुदा ने जो कुछ इस ज़मीन पर बनाया है उसके पीछे एक मकसद है, और कोई भी चीज़ उसने बगैर किसी मकसद के पैदा नहीं की। इसलिए हमें खुदावंद अपने खुदा के हजूर दुआ करने की ज़रूरत है कि हम उसके घर में उसकी तारीफ और उसकी तमजीद के लिए इस्तेमाल हों। इसलिए मेरे साथ इस बात को और इस सच को याद रखें और उससे पूछें कि खुदावंद, नबी को तूने खिदमत दी, रसूल को तूने खिदमत दी, आज हमें बता कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, हमारे लिए तेरी क्या खिदमत है? आए हम खुदा के हुजूर झुकें और दुआ करें। खुदा बाप, जैसे तूने यर्मिया को, जैसे तूने मूसा को, जैसे तूने दाऊद को खुदावंद अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया, जैसे पालूस को तूने उसकी माँ के पेट ही से पहले चुन लिया, हम सब के लिए भी तेरा मंसूबा है। हम सबको सिखा कि हमारी ज़िंदगी का इस ज़मीन पर क्या मकसद है, कि तूने हम सबको ये हुक्म दिया है कि जाओ और सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और यीशु मसीह के नाम की गवाही दो। खुदा बाप, आई हुई तमाम बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ। आज कलाम का जो बीज हम हमारी जिंदगी में बोया गया है, हम खुदा खुदा उससे अपने आप में देखें कि हमारे लिए तेरी खिदमत क्या है, हम किस तरह तुझे खुश कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांग।